मेरे युवा मित्रों नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे फिलिस्तीनी और इसराइल के बारे में जो बातें कर रहा था उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं और समाचारों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह दोस्तों कि मैंने कल आप सबसे एक छोटा सा सवाल किया था और वह कैंटर कछुआ के ऊपर था, ध्यान होगा, और मैंने आप सबसे यह जानना चाहा था कि इसे मैंने चुना क्यों, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है और इसके लिए मैं आप सबकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कारण बताए हैं वे सब के सब सही हैं, परफेक्ट कारण हैं। बस एक ही स्टूडेंट ने उस कारण का भी उल्लेख किया है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, और वो ये, आपको ध्यान होगा कि मैं जब पिछले साल के पेपर के बारे में आप सबसे चर्चा कर रहा था तो उसमें फ्रॉग माउथ जैसे पक्षी की बात आई थी, अनूप मृग की बात आई थी, तो इससे आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि यार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं या सूचनाएं होती हैं, समाचार होते हैं, इन पर भी जो यूपीएससी है प्री एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। देखिए, जब एक छोटी सी यह बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो क्या है कि अब ये मैग्नेट का काम करता है, जैसे आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं या कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, और जैसे ही इस तरह की कोई बात आपके दिमाग में पहुंचेगी तो तुरंत उसको पकड़ लेगा कि नहीं नहीं यार, ये तो हमारे काम की चीज़ है। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपके दिमाग में इस क्षमता का होना बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बीच बीच में बार बार आप लोगों को याद दिलाता रहता हूं कि जो आपका सिलेबस है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, खासकर 3 साल के बकायदे आपके दिमाग में रच बस जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा जब हो जाएगा तभी आप सही मायने में अपनी तैयारी को एक बहुत ही सटीक रूप दे सकेंगे। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि यदि आपने यह क्षमता थोड़ी सी भी विकसित कर ली है तो आपकी यह क्षमता लगातार बढ़ती चली जाएगी, और इनफैक्ट मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि डेली ऑडियो लेक्चर में मेरी जो कोशिश होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन देने की नहीं होती है, आपके अंदर यह क्षमता पैदा करने की होती है। दोस्तों, आइए अब हम कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज ऐसे ही मेरे मन में एक बात आई, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, और ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल है, आपके लिए अभ्यास एक्सरसाइज है। अभी जो तूफान आया है, इस तूफान के बारे में आप चैनल्स पर भी देख रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि कैसे वो तबाही बचा रहा है हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर। मैं चाहता हूं कि आप आधे घंटे का समय निकालें और कल्पना करें इत्मीनान के साथ कि आप उस जिले के कलेक्टर हैं और आपको अब अपने लोगों को बचाना है। 2 दिनों पहले मौसम विभाग ने आपको सूचना दे दी है कि तूफान आने वाला है और यह बहुत ही भयंकर तूफान होगा। अब आपको स्टेप्स लेने हैं, लेकिन अभी आपकी मदद करने के लिए कोई कमेटी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि जब आप जिला कलेक्टर होंगे तो बकायदे एक कमेटी होती है जिसमें हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, है ना, मेडिकल डिपार्टमेंट के भी लोग होंगे, बिजली विभाग के भी लोग होंगे, आपदा मोचन विभाग के भी लोग होंगे, तो हर विभाग के लोग होते हैं और फिर वो अपनी अपनी सलाह देते हैं और कलेक्टर सुनता है और फिर निर्णय लेता है, राइट। लेकिन अभी आपको सलाह देने वाला कोई नहीं है, आप खुद ही अपने सलाहकार हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक लिस्ट बनाइए कि मैं ये करूंगा, और जब वो लिस्ट पूरी हो जाए तो फिर आप उसकी प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि नहीं, सबसे पहले मैं ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, एक थोड़ा सा प्लान चाकआउट कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि जब आप इस तरह का अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी, और मेंस के लिए तो आप जानते हैं कि ये सब कितना जरूरी है, और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि मेंस का जो 4th पेपर होता है, जो एथिक्स का पेपर होता है, उसका आधा जो पोर्शन है 50% वो केस स्टडी का होता है, तो इनडायरेक्टली आप एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि केस स्टडी की आप तैयारी कर रहे हैं, और आपको मजा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप कलेक्टर होकर के सोचेंगे ना, बन करके सोचेंगे, तो आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आप कलेक्टर के भाव में चले जाएंगे और वो बहुत अच्छा महसूस कराएगा आपको, हो सकता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाए। फ्रेंड्स, कोरोना के समय में 1-2 राज्यों ने जो घोषणाएं की हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पिछले साल पूछ लिए गए थे कि कुछ राज्यों ने ये घोषणा की है कि कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनका खर्चा राज्य उठाएगी, उनके खाने पीने का और पढ़ाई का खर्चा राज्य उठाएगी, कुछ ने बकायदे ये भी कहा है कि जिनके घर में और दूसरी तरह की दिक्कतें कोरोना की वजह से पैदा हुई हैं, उन्हें सरकार अलग तरीके से सहायता देगी। हो सकता है कि उन्हें नौकरी में सहायता दे, कुछ और इस तरह की योजनाएं सरकारें घोषित कर रही हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को दो आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, दोनों बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। एक है चीन की वैज्ञानिक शक्ति। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इसमें से आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। देखिए, ये माना जा रहा है कि 20वीं शताब्दी के बाद से, उत्तरार्ध के बाद से, मतलब कह लीजिए कि 1950 के बाद से, जो एक नई दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनी, तो उन राष्ट्रों ने बहुत तेजी के साथ विकास किया है जिन्होंने ज्ञान पर भरोसा किया, टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, विज्ञान पर भरोसा किया, राइट? और इसी के दम पर आज अमेरिका पूरी दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र बना हुआ है। इसराइल भी अब उसी में आ गया है। श्रेष्ठतम राष्ट्र न बना हो, लेकिन फिर भी उसकी जो रियल ताकत है वो विज्ञान है। तो ये जो आर्टिकल है चीन की वैज्ञानिक शक्ति, आप नोट कीजिए कि जो चीन है वो किस तरीके से अपनी वैज्ञानिक शक्ति को विकसित कर पाया है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, कैसे उसने ऐसा किया। क्योंकि देखिए, जब हमारी तुलना होती है तो चीन के साथ ही होती है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वर्ल्ड लेवल पर वो भी चीन ही है। तो बेहतर होगा कि आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, और बाय द वे जब आप लिखेंगे ऐसे में और या अपने जनरल स्टडीज के किसी आंसर में, तो आप मेंशन कर सकते हैं उदाहरण के रूप में कि चीन ने ऐसा किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, श्याम सरन जी का लिखा हुआ है, दायित्व के निर्वहन से पीछे नहीं हटे सरकार। इसमें भी आपको कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। अभी कोरोना की जो भी स्थिति बनी, अब आगे ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। यह भी मेंस की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं कि इसमें से भी आप कुछ पॉइंट्स निकालेंगे तो आपके लिए वो पॉइंट्स मददगार होंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, फिलिस्तीनी इसराइल, ये दूसरा भाग है। मैं थोड़ी से इसी तरह से पार्ट में आप सबसे बातें करूंगा, क्योंकि जो दूसरी घटनाएं घटित हो रही हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं दोस्तों, उन्हें मैं पूरी तरह से मिस नहीं कर सकता, और मैं नहीं चाह रहा हूं कि फिलिस्तीनी इसराइल पर मैं 5-7-10 मिनट में बात करके अपने को मुक्त महसूस करूं। मैं इस पर आपकी अच्छी तैयारी कराना चाह रहा हूं, जो एक बेसिक होनी चाहिए। अब आप देखिए कि अखबारों में जो भी आप पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर आप जो भी सुन रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें आप कुछ शब्दों के संपर्क में आ रहे हैं, और जब तक आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जान नहीं लेते हैं तो याद तो आप कर लेंगे, लेकिन जो रियल में पावर होनी चाहिए, जिसे आप एनालिसिस पावर कहते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती। तो पहली बात, जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं और एशिया के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको दो शब्द मिलते हैं, पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व एशिया। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व एशिया, ये सच पूछिए तो ये एशिया के वर्तमान में एक तरह से सबसे समस्याग्रस्त एरिया है, और ये हमारे जो यूरोप के देश हैं या जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको ये सूट भी करता है कि ये समस्याग्रस्त एरिया बना रहे। चलिए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी ये जो इसराइल की जो समस्या, फिलिस्तीनी इसराइल की समस्या है, ये बेसिकली इसे नाम दिया जा रहा है मध्य पूर्व एशिया की समस्या। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये मध्य पूर्व क्या है। देखिए, फिर जॉर्डन, सीरिया, टर्की, ये सब भी जब आप नक्शे में जाकर के देखेंगे ना, तो ये मध्य पूर्व में ही आते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप बकायदे नक्शे में आइडेंटिफाई करें कि कहां फिलिस्तीन है, कहां इसराइल है, कहां गाजा पट्टी है, कहां आपको दूसरे जो और राष्ट्र के हम नाम पढ़ रहे हैं कि जैसे जॉर्डन वगैरह के मैंने बात की, तो आप देखें कि ये कहां पर है, तभी आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। दोस्तों, फिर आप नाम सुनते होंगे, हमास का नाम खूब आ रहा है। हमास, ये हमास क्या है, इसका संबंध फिलिस्तीन से है, राइट? फिलिस्तीन का यह एक तरह से आप कह लीजिए कि कुछ लोग इसे आतंकवादी संगठन कहते हैं, कुछ लोग इसे सैन्य संगठन कहते हैं, कुछ लोग इसे राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं। देखिए, अपना अपना नजरिया है। ज्यादातर देश हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। ये जो हमास है, ये फिलिस्तीन के स्वाभिमान की बात करता है। ये कहता है कि नहीं नहीं, हम इसराइल से लड़ेंगे, अपनी जो जमीन है उसे उसके हाथ में नहीं जाने देंगे, बल्कि उसने जो हमारी जमीन हड़प ली है उसे भी हम वापस लेंगे। तो अभी जो युद्ध चल रहा है एक प्रकार से, तो उसमें आपको यही पढ़ने को मिलता होगा कि हमास ने इधर से ये छोड़ा और उधर से फिर इसराइल ने ये रॉकेट छोड़े। और देखिए कि जो इसराइल जो रॉकेट छोड़ रहा है वो गाजा पर छोड़ रहा है, गाजा पट्टी पर छोड़ रहा है। ये जो फिलिस्तीनी है, इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो गाजा का है और दूसरा वेस्ट बैंक का है। वेस्ट बैंक आपने सुना होगा। तो जो वेस्ट बैंक है उस पर एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि शांति प्रिय फलस्तीनियों का कब्जा है, लोग ठीक ठाक शांत तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो गाजा पट्टी है इस पर हमास का कब्जा है, इसीलिए इसराइल जो सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है वो हमास पर कर रहा है, और कारण यह भी है कि हमास भी जो अटैक कर रहा है वो इसराइल पर कर रहा है। तो हमास भी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। एक नाम बीच बीच में आपको पढ़ने को मिलेगा, मोसाद। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मोसाद बेसिकली इसराइल का गुप्तचर संगठन है और दुनिया के श्रेष्ठतम गुप्तचर संगठनों में है मोसाद, और इसराइल की बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आप इसराइल और फिलिस्तीन को कंपेयर करेंगे तो देखिए फिलिस्तीन की पॉपुलेशन इसराइल की आधी तो है, समझ लीजिए। इस हिसाब से इसराइल जो है 1 करोड़ से थोड़ा सा कम पॉपुलेशन में है, करीब 80-85 हजार के आसपास इसराइल की होगी, 50-55 के आसपास शायद फिलिस्तीन की है। तो आप देखें कि फिलिस्तीन की पॉपुलेशन भी कम है, और दूसरा जो है इसराइल वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है, इन्वेंशंस उसके पास बहुत हैं, और खासकर जो हथियार और जो युद्ध रणनीति और युद्ध के जो रॉकेट बम पता नहीं क्या क्या आधुनिकतम अस्त्र इसराइल के पास हैं। इसराइल को हरा पाना आसान नहीं है। आपको खासकर यह मालूम होना चाहिए कि 1967 के आसपास अरब के कुछ देशों ने मिलकर के इसराइल पर अटैक किया था कि हम इसराइल को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये फिलिस्तीन के साथ थे, इन्हें लग रहा था कि जो इसराइल है ये हमारे अरब देश को परेशान कर रहा है, इसकी जमीन हड़प रहा है। 6 दिन के अंदर इसराइल ने इन सबको पस्त कर दिया, 6 दिन। इसीलिए 6 दिन का युद्ध भी इसे कहा जाता है। सोच करके देखिए कि इसराइल कितना शक्तिशाली है, और ये मैं 67 की बात बता रहा हूं। आज हम 2021 में हैं, इसराइल को युद्ध में हरा पाना संभव नहीं है, लेकिन हमास इस बात को नहीं समझ रहा है। तो दोस्तों, मैंने कुछ तथ्य अभी आपको और बताए हैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि 2-3 एपिसोड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। उसमें फिर भारत की क्या नीति है, क्यों है, कैसे है, वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। खेना लाल अंडमान निकोबार से, चंदन सिंह कुंवर उत्तराखंड से, अभिषेक ठाकुर डलहौजी हिमाचल प्रदेश से, और कवलजीत कौर। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।